एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथसार में आपका स्वागत है। एकत्र फाउंडेशन के साथ हम विश्व साहित्य की गहराइयों में उतरते हैं और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अहम प्रभावशाली कृति की, थॉमस मान का लघु उपन्यास डेथ इन वेनिस।
हाँ, वेनिस में मृत्यु। 1912 में आई ये किताब डे टोड इन वोनेडिग आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है।
बिल्कुल। और थॉमस मान, जिन्हें 1929 में नोबेल पुरस्कार मिला, वो जाने ही जाते हैं अपनी बौद्धिक गहराई के लिए।
सही कहा, उनकी लेखनी में वो द्वंद्व साफ झलकता है जैसे व्यवस्था बनाम अव्यवस्था, या कहें तर्क बनाम जुनून।
हाँ, और इस उपन्यास में तो ये नीचे वाले एपोलोनियन और डाउनीसियन सिद्धांतों का सीधा टकराव दिखता है ना? तर्क और संयम एक तरफ और आवेग और अराजकता दूसरी तरफ।
बिल्कुल, शोपेनहावर का प्रभाव भी महसूस होता है इसमें।
और इसका समय भी देखिए, 1912, मतलब पहले विश्व युद्ध से ठीक पहले का यूरोप।
हाँ, 1911 के, और वहां किसी पोलिश लड़के को देखकर मिली प्रेरणा।
अच्छा, तभी इसे आधुनिकतावाद का एक बेहतरीन नमूना माना जाता है, जहां बाहरी दुनिया के बजाय व्यक्ति के अंदर के उथल पुथल पर ज्यादा ध्यान है।
सही, तो आज हम इसी कहानी, पात्रों और इसके गहरे संदेशों पर बात करेंगे।
हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो मुख्य पात्र हैं गुस्ताफ फॉन अशिनबाग
जी,
50 पार के म्यूनिख में रहने वाले, बहुत ही इज्जतदार लेखक, पूरी जिंदगी एकदम अनुशासन में, कला के लिए समर्पित।
उन्होंने अपनी भावनाओं को जैसे दबा कर रखा और साहित्य रचा बिल्कुल शास्त्रीय अंदाज में, नैतिक दृढ़ता पर जोर देते हुए।
हाँ, और उन्हें काफी शोहरत भी मिली, लेकिन कहानी की शुरुआत में वो एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहे होते हैं, जैसे कुछ चूक गया हो।
रचनात्मक खालीपन है ना?
बिल्कुल। और इसी हाल में म्यूनिख में एक कब्रिस्तान के पास उनकी नजर एक अजीब से दिखने वाले अजनबी पर पड़ती है। अच्छा, विदेशी सा।
हाँ, लाल बाल, कुछ खास तरह की शक्ल, और उसे देखकर ही एशनबाग के अंदर कहीं जाने की, भाग जाने की एक अतार्किक इच्छा जाग उठती है।
ये दिलचस्प है, ये सिर्फ छुट्टी की इच्छा नहीं लगती, ये जैसे उनके इतने सालों के आत्मनियंत्रण की दीवार में पहली दरार थी।
बिल्कुल सही कहा, एक पलायन की गहरी चाह, जैसे वो अजनबी किसी आने वाले बदलाव का संकेत हो।
और यही बेचैनी उन्हें खींच ले जाती है वेनिस, लीडो के एक आलीशान होटल में।
हाँ, और रास्ते में भी कुछ अजीब चीजें होती हैं। जहाज पर वो बूढ़ा आदमी जो जवानों की तरह रंगरलियां मना रहा था,
वो बड़ा अटपटा था।
और फिर वेनिस में वो गोंडोला वाला जो बिना लाइसेंस के नाव चला रहा था, और उसका रवैया भी कुछ डरावना सा था।
ये सब जैसे अशुभ संकेत थे।
बिल्कुल। खैर, होटल पहुंचकर उनकी नजरें टिक जाती हैं एक पोलिश परिवार पर, और खासकर उनके बेटे ताज्जियों पर।
ताज्जियो, यहीं से कहानी मुड़ते।
हाँ, लड़का कोई 14 साल का होगा, बेहद सुंदर, सुनहरे बाल, नीली आंखें, जैसे कोई ग्रीक देवता की मूर्ति हो। आशनबाग तो बस देखते रह जाते हैं,
जैसे सौंदर्य का साक्षात अवतार देख लिया हो।
बिल्कुल, और यहीं से उनका आंतरिक संघर्ष तेज हो जाता है।
पहले तो वो इसे कलाकार की नजर से देखते हैं ना, उसकी सुंदरता का विश्लेषण करते हैं, ग्रीक मूर्तियों से तुलना करते हैं।
हाँ, वो बौद्धिक कवच ओढ़ने की कोशिश करते हैं, पर ये ज्यादा देर चलता नहीं। धीरे धीरे ये प्रशंसा एक जुनून में बदलने रखती है, एक मौन मगर सब कुछ निगल जाने वाला जुनून।
और यही वो अपोलियोनियन बनाम डायोनिसियन वाला संघर्ष सामने आता है, जीवन भर का तर्क, अनुशासन, गरिमा।
और दूसरी तरफ ताज्जियो को देखकर जागा वो अनियंत्रित अराजक आवेग।
और कमाल की बात यह है कि वेनिस शहर खुद इस संघर्ष का आईना बन जाता है।
सही कहा, एक तरफ उसकी वो अद्भुत सुंदरता, कला, इतिहास,
और दूसरी तरफ उसकी वो सड़ती हुई गलियां, बदबू और वो छुपी हुई महामारी, हैजा।
हाँ, वो शहर की बाहरी चमक और अंदरूनी बीमारी, बिल्कुल आशनबाग की अपनी हालत जैसी, उनका नैतिक पतन।
आशनबाग का ये बदलाव देखना वाकई दुखद है, जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी आत्मसंयम बरता।
वो अब एक लड़के के पीछे छाया की तरह घूम रहा है, समुद्र तट पर, लॉबी में, वेनिस की गलियों में, बस उसकी एक झलक पाने की चाह।
और वो इतने इस बर्ताव को सही भी ठहराने की कोशिश करते हैं ना, प्लेटो का हवाला देकर।
हाँ, फीड्रस का जिक्र करते हैं कि सौंदर्य आत्मा को ऊपर उठाता है, लेकिन वो इस विचार को अपने जुनून को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भूल जाते हैं कि प्लेटो ने सौंदर्य के साथ संयम की भी बात की थी।
ये तो आत्मवंचना हुई।
बिल्कुल, और उनका पतन गहराता जाता है। एक बार वो वेनिस छोड़ने का फैसला भी करते हैं। शायद उन्हें खुद भी एहसास हो रहा था कि वो फिसल रहे हैं।
हाँ, वो स्टेशन तक जाते भी हैं।
लेकिन फिर पता चलता है कि उनका सामान गलती से कहीं और चला गया है, और उन्हें रुकने का बहाना मिल जाता है। और इस पर वो जो खुशी महसूस करते हैं वो लगभग पागलों जैसी है।
यही वो जानबूझकर उस रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं,
है ना?
हाँ, यही वो सचेत रूप से समर्पण कर देते हैं। अब वापसी का कोई सवाल ही नहीं।
और यहीं से उनकी नैतिक गिरावट भी तेज हो जाती है। शहर में हैजा की अफवाहें फैलने लगती हैं,
हवा में दवा की गंध। फिर एक अंग्रेज ट्रैवल एजेंट उन्हें साफ बताता भी है कि शहर में हैजा फैलाए और अधिकारी छुपा रहे हैं।
एजेंट उन्हें जाने की सलाह देता है।
हाँ, पर एशनबाख ना सिर्फ खुद रुकते हैं बल्कि वो ताजियों के परिवार को भी आगाह नहीं करते।
क्यों?
इस डर से कि वो चले जाएंगे।
बिल्कुल, अगर वो चले गए तो उनके रुकने का मतलब ही क्या रह जाएगा।
ये तो बहुत बड़ी नैतिक चूक है, अपने जुनून के लिए दूसरों की जान खतरे में डालना।
सही कहा, यहाँ उनका वो सारा बौद्धिक नैतिक आवरण तार तार हो जाता है।
और फिर उनका शारीरिक पतन भी शुरू होता है।
हाँ, उन्हें वो भयानक सपना आता है, जंगली आदिम उत्सव का, डायोनेशियन शक्तियों की पूरी जीत।
और फिर वो ताजियों का पीछा करते हैं वेनिस की उन बीमार गलियों में थके हारे।
और अंत में वो शर्मनाक कोशिश जवान दिखने के लिए बाल रंगवाना, मेकअप लगाना।
ठीक उसी बूढ़े की तरह जिसे देखकर उन्हें शुरू में घिन आई थी। कितनी बड़ी विडंबना है।
बिल्कुल।
अब जरा ताजियों की बात करें, वो पात्र से ज्यादा एक प्रतीक लगता है ना?
हाँ, सही कहा, वो पूरी कहानी में लगभग निष्क्रिय है। शायद उसे पता भी नहीं कि ये बूढ़ा लेखक उसके लिए क्या महसूस करता है।
उसकी तरफ से बस कुछ अनजाने इशारे, मुस्काने,
जिन्हें एशनबाख अपने मन में बहुत बड़ा बना लेते हैं।
वो बस सौंदर्य के उस आदर्श का प्रतीक है जिसने एशनबाख को भटका दिया, एक उत्प्रेरक।
और अंत में उसका समुद्र की ओर इशारा करना, जैसे वो मृत्यु का दूत हो, हर्मीज साइकोपॉम्पोस।
हाँ, एक मिथकीय स्पर्श आ जाता है वहाँ। और वो बाकी छोटे पात्र, कब्रिस्तान का अजनबी, वो बूढ़ा छैला, गोंडोलियर, गवैया,
वो सब जैसे एशनबाख के पतन के पड़ाव हैं, आने वाली तबाही के संकेत।
तो ये कहानी कई गहरे सवाल छोड़ जाती है। पहला तो वही तर्क बनाम जुनून।
हाँ, कि जरूरत से ज्यादा आत्मनियंत्रण भी उतना ही विनाशकारी हो सकता है जितना कि बेलगाम जुनून। दबी हुई इच्छाएं जब फटती हैं
तो सब कुछ तबाह कर देती हैं। ये सिर्फ एशनबाख की कहानी नहीं, ये शायद हर इंसान, हर समाज की कहानी हो सकती है।
बिल्कुल। और दूसरा सवाल सौंदर्य और नैतिकता के रिश्ते का। क्या सौंदर्य निरपेक्ष होता है
या देखने वाले की नियत उसे अच्छा या बुरा बनाती है? ताजियों का सौंदर्य एशनबाख के लिए प्रेरणा से शुरू होकर पतन का कारण बन जाता है।
हाँ, जैसे मान कह रहे हो कि सिर्फ सौंदर्य के पीछे भागना खतरनाक है, वो हमें जिंदगी और जिम्मेदारियों से दूर ले जा सकता है।
वो पंक्ति याद आती है, जिसने सौंदर्य को निहार लिया है वो पहले से ही मृत्यु को समर्पित है। कितना गहरा और बेचैन करने वाला विचार है।
हाँ, सौंदर्य जैसे एक जानलेवा आकर्षण।
और फिर कलाकार की दुविधा, क्या महान कला के लिए जीवन से कटना जरूरी है?
एशनबाख ने यही किया था, पर शायद इसी अलगाव ने उन्हें इतना कमजोर बना दिया कि जब जुनून का सामना हुआ तो वो बिखर गए।
उनका वो विचार भी तो है, हम कलाकार एरोस के बिना सौंदर्य के मार्ग पर नहीं चल सकते, हम बुद्धिमान या प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। ये जैसे उनकी हार की स्वीकारोक्ति है।
हाँ, और पूरे उपन्यास में वो मृत्यु और शय का माहौल छाया रहता है। एशनबाख का बुढ़ापा, वेनिस की हालत, हैजा,
सब मिलकर एक निराशाजनक तस्वीर बनाते हैं। यहाँ तक कि एकांत भी, जो रचनात्मकता के लिए जरूरी माना जाता है,
वो भी दोधारी तलवार साबित होता है। वो विकृत अवैध चीजों को भी जन्म दे सकता है।
मान की शैली भी कमाल की है, वो लिखते तो तीसरे पुरुष में है पर सब कुछ एशनबाख की आंखों से दिखाते हैं।
हाँ, और भाषा कितनी सदीवी बौद्धिक है, जबकि अंदर एशनबाख की उथल पुथल मची है। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत असरदार है।
पाठक वो सब देख पाता है जो एशनबाख या तो देख नहीं पा रहे या देखना नहीं चाहते।
बिल्कुल। और प्रतीकों का इस्तेमाल तो लाजवाब है। वेनिस, ताजियो, समुद्र, लाल रंग
और ग्रीक मिथकों के हवाले, ये सब मिलकर एशनबाख के व्यक्तिगत संकट को एक बड़ी सार्वभौमिक कहानी बना देते हैं।
सम्मानित व्यक्ति को धीरे धीरे खत्म होते देखते हैं,
उसके लिए तरस भी आता है, उसके अकेलेपन के लिए।
हाँ, और फिर उसकी नैतिक गिरावट पर गुस्सा भी आता है, घृणा भी होती है।
बिल्कुल।
और कहानी हमें बहुत से सवालों के साथ छोड़ जाती है, हमारी सभ्यता, हमारा अनुशासन, हमारी नैतिकता, ये सब कितने नाजुक हैं।
क्या हमारे अंदर हमेशा वो आदिम ताकतें मौजूद रहती हैं, बस मौके का इंतजार करती हैं?
तर्क की सीमा क्या है? सौंदर्य की खोज कहाँ तक सही है? ये सवाल आज भी उतने ही जरूरी हैं।
हाँ, ये उपन्यास आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।
थॉमस मान की ये कृति हमें दिखाती है कि कैसे तर्क और जुनून के बीच संतुलन बनाना शायद जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है, और ये संतुलन कितना नाजुक होता है।
और ये भी कि सौंदर्य, जिसे हम इतना ऊंचा दर्जा देते हैं, वो प्रेरणा भी दे सकता है और विनाश भी कर सकता है। एक दोधारी तलवार, ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।